तो आज हम जिस किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो आज के दौर का मतलब एक आईना है।
एक ऐसा आईना जो शायद थोड़ा चुभता भी है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आरिफ क्वांग के 2023 के उपन्यास येलो फेस की। ये किताब एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है, कहानी पर हक किसका होता है?
सुनाने वाले का या उसका जिसकी वो कहानी है?
हाँ,
और ये सवाल आज के दौर में बहुत अहम हो गया है। मतलब आरिफ क्वांग को लोग उनकी फैंटेसी सीरीज द पॉपी वॉर के लिए जानते हैं।
हाँ, वो तो बहुत मशहूर है।
लेकिन येलो फेस के साथ उन्होंने एक तरह से आज की हकीकत पे कलम चलाई है। ये एक साहित्यिक व्यंग्य है, पर इसकी कहानी किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर से कम नहीं है।
अच्छा,
ये किताब हमें पब्लिशिंग की दुनिया, सोशल मीडिया के हंगामे और शोहरत की अंधेरी गलियों में ले जाती है।
तो चलिए इस दुनिया में कदम रखते हैं। इसकी शुरुआत होती है दो लेखिकों से जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।
हाँ, तो एक तरफ है जून हेवर्ड,
एक स्ट्रगलिंग राइटर।
बिल्कुल एक श्वेत लेखिका जिसकी पहली किताब मतलब आई और चली गई, किसी ने नोटिस तक नहीं किया। वो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है और अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जल रही है।
और दूसरी तरफ कौन है?
दूसरी तरफ है एथीना ल्यू, एक चीनी अमेरिकी लिटरेरी सुपरस्टार। उसकी हर किताब बेस्टसेलर बनती है, उस पर नेटफ्लिक्स शो बन रहे हैं। वो मतलब वो सब कुछ है जो जून बनना चाहती है।
मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इनके बीच का रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा कंपटीशन का होगा, खासकर जून की तरफ से।
दोस्ती तो शायद कभी थी ही नहीं। जून की नज़र से देखें तो ये एक तरफा जलन है। उसे लगता है कि एथीना की सफलता सिर्फ उसकी प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि उसकी एशियन पहचान की वजह से है।
अच्छा, तो ये एक विक्टिम वाली मानसिकता है।
हाँ, वो खुद को ये कहकर तसल्ली देती है कि मैं तो बस एक साधारण गोरी लड़की हूँ, मेरी कहानियों में किसी को दिलचस्पी क्यों होगी। और यही मानसिकता इस पूरी कहानी का इंजन है।
ये तो सफलता न मिलने का एक बहुत ही खतरनाक बहाना है, और मुझे लगता है यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है।
बिल्कुल। एक शाम एथीना अपनी नई नेटफ्लिक्स डील का जश्न मना रही होती है।
अच्छा,
यून भी वहीं है,
ठीक है।
दोनों शराब पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अचानक एक बहुत ही अजीब बेतुकी सी दुर्घटना होती है।
दुर्घटना? कैसी दुर्घटना?
एथीना पैनकेक खाते हुए चौक कर जाती है और वहीं जून की आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है।
क्या, पैनकेक से?
हाँ,
एक साहित्यिक सितारे की मौत पैनकेक से? ये अपने आप में कितना डार्क और व्यंग्यात्मक है। उस सदमे और अफरा-तफरी के माहौल में जून क्या करती है?
यहीं पर जून एक ऐसा फैसला लेती है जो नैतिक रूप से पूरी तरह गलत है, लेकिन उसके लिए एक अवसर की तरह है।
वो क्या?
वो एथीना के स्टडी रूम से उसकी ताज़ा अधूरी मैनुस्क्रिप्ट चुरा लेती है। उस मैनुस्क्रिप्ट का नाम है द लास्ट फ्रंट, जो पहले विश्व युद्ध में चीनी मजदूरों के अनकहे इतिहास के बारे में है।
एक ऐसी कहानी जिसे लिखने का जून के पास ना तो कोई निजी अनुभव है, ना ही कोई सांस्कृतिक अधिकार। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या कला की कोई सरहद होनी चाहिए? कई लोग तर्क दे सकते हैं कि एक लेखक को कुछ भी लिखने की आज़ादी होनी चाहिए।
उपन्यास इसी सवाल के हर पहलू को खोलता है। जून खुद को यही तर्क देकर सही ठहराती है। वो इसे चोरी नहीं कहती, वो कहती है कि वो एथेना के काम को बचा रही है, उसे सम्मान दे रही है।
वाह,
वो खुद को यकीन दिलाती है कि एथेना की लिखाई बिखरी हुई थी, कच्ची थी, और वो सिर्फ उसे बेहतर बना रही है।
मतलब वो एक एक आत्म धोखे की पूरी इमारत खड़ी कर लेती है।
बिल्कुल, वो कहानी को अपनाती नहीं, बल्कि ये मान लेती है कि वो कहानी हमेशा से उसकी ही थी।
और मुझे लगता है कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री भी इस धोखे में खुशी खुशी शामिल हो जाती है।
आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जून महीनों लगाकर उस मैनुस्क्रिप्ट को एडिट करती है, उसे अपने नजरिए से बदलती है और अपने नाम से जमा कर देती है, और प्रकाशकों ने उसे छापने की होड़ मच जाती है। और यहीं पर उसकी एडिटर डैनियला वेक्सलर एक दिलचस्प सुझाव देती है।
क्या सुझाव?
वो कहती है, जून हेवर्ड नाम थोड़ा सादा है, क्यों ना हम जूनिपर सॉन्ग नाम इस्तेमाल करें।
जूनिपर सॉन्ग,
हाँ,
मतलब एक ऐसा नाम जो थोड़ा एथनिकली एम्बिगुस लगे, है ना, जिसमें एक एशियाई होने का इशारा हो।
एग्जैक्टली, यही तो व्यंग्य है। इंडस्ट्री को एक विविध चेहरे की जरूरत है, और अगर असली चेहरा नहीं है तो वो एक बनाने में मदद करेंगे।
ये तो साफ साफ धोखाधड़ी को ब्रांडिंग का नाम देना हुआ।
हाँ, जून की लेखक वाली तस्वीर भी जानबूझकर धुंधली रखी जाती है, और नतीजा किताब छपती है और एक साहित्यिक सनसनी बन जाती है।
तो जून हेवर्ड, अब जूनिपर सॉन्ग।
हाँ, वो रातों रात वो स्टार बन जाती है जिससे वो हमेशा जलती थी। उसने वो सब पा लिया जो वो चाहती थी, लेकिन एक चोरी की नींव पर।
तो जून को सफलता मिल गई, नाम मिल गया, लेकिन इतने बड़े झूठ पर बनी इमारत ज्यादा दिन टिक नहीं सकती, खासकर आज के इंटरनेट के जमाने में।
डर तो था, और वो डर एक भूत की तरह उसे हमेशा सताता है। कहानी में तनाव यहीं से बढ़ना शुरू होता है, और इसके दो मोर्चे हैं।
दो मोर्चे,
एक उसका अपना दिमाग जहां उसे एथीना की आवाज सुनाई देती है, और दूसरा असली दुनिया का मोर्चा, सोशल मीडिया
यानी ट्विटर की अदालत।
बिल्कुल, किताब के आते ही ऑनलाइन कानाफूसी शुरू हो जाती है। गुमनाम अकाउंट्स, बुक ब्लॉगर्स, ये सब सवाल उठाने लगते हैं।
अच्छा,
एथीना की लिखने की शैली और इस किताब की शैली में समानताएं निकाली जाती हैं। लोग पूछते हैं, एक श्वेत लेखिका चीनी इतिहास और अनुभव के बारे में इतनी प्रामाणिकता से कैसे लिख सकती है?
और ये छोटी छोटी आवाजें धीरे धीरे एक बड़े शोर में बदल जाती होंगी।
हाँ बिल्कुल,
और इस शोर का कोई चेहरा भी तो होगा, कोई तो होगा जो इस अभियान को लीड करेगा।
हाँ है ना, और वो चेहरा है कैंडिस ली का, एक युवा महत्वाकांक्षी एशियाई अमेरिकी लेखिका जो एथीना को अपना आदर्श मानती थी।
हाँ, और उसे शक हो जाता है।
उसे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। वो एक जासूस की तरह सुराग इकट्ठा करना शुरू कर देती है, और ट्विटर पे हैशटैग जून हेवर्ड इज अ स्कैम जैसा हैशटैग चलाती है।
ओह,
और ये हैशटैग वायरल हो जाता है। जून अब सिर्फ एक लेखिका नहीं बल्कि एक विवाद का केंद्र बन जाती है।
जून इस हमले का सामना कैसे करती है? क्या वो टूट जाती है या और मजबूती से लड़ती है?
वो लड़ती है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो उसे और नीचे गिरा देता है। वो हर आलोचना को ट्रोलिंग या जलने वालों का हमला बताकर खारिज कर देती है।
वो डिफेंसिव हो जाती है
बहुत ज्यादा। वो टीवी इंटरव्यू में जाकर कहती है कि कला की कोई सीमा नहीं होती, कि वो तो बस एक कहानी सुना रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पागलपन की हद तक पहुंच रही होती है। उसे हर जगह साजिश नजर आती है, और कैंडिस ली उसके लिए एक जुनून बन जाती है।
तो जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री कल तक उसे सिर पर बिठा रही थी, अब उसका क्या रुख है?
इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही धर्म होता है,
मुनाफा।
बिल्कुल, जैसे ही विवाद बढ़ता है और किताब की बिक्री पर असर पड़ने का खतरा होता है, उनका समर्थन कम होने लगता है। जो एडिटर उसे जूनिपर सॉन्ग बना रही थी, अब उसके फोन उठाना बंद कर देती है।
फिल्म डील का क्या हुआ?
वो भी खटाई में पड़ जाती है।
जून को एहसास होता है कि जिस सिस्टम ने उसे बनाया था, वही अब उसे निगलने के लिए तैयार है।
और हताशा में इंसान अक्सर सबसे बड़ी गलती करता है। जून का अगला कदम क्या होता है?
वो पूरी तरह से हताश हो चुकी है। उसे लगता है कि अगर वो ये साबित कर दे कि एथीना भी कोई दूध की धूली नहीं थी, तो शायद लोग उसे बख्श देंगे।
तो वो एथीना पर ही इल्जाम लगाना चाहती है।
हाँ, इसी उम्मीद में वो सबूत खोजने के लिए एथीना के माता पिता के घर में घुस जाती है और एथीना की पुरानी डायरिया चुरा लेती है।
ये तो और नीचे गिरना हुआ। क्या उसे उन डायरियों में कुछ मिलता है?
हाँ, और जो मिलता है वो कहानी के नैतिक दांव पेश को और भी उलझा देता है।
क्या मिलता है उसे?
डायरियों से पता चलता है कि एथीना भी एक तरह की साहित्यिक गिद्ध थी। साहित्यिक गिद्ध मतलब?
वो अपने दोस्तों, अपने प्रेमियों, यहाँ तक कि अनजान लोगों की जिंदगी के दुखों और ट्रॉमा को उनकी इजाजत के बिना अपनी कहानियों में इस्तेमाल कर लेती थी। वो लोगों को सिर्फ कहानी के एक प्लॉट पॉइंट की तरह देखती थी।
अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसका मतलब एथीना भी नैतिक रूप से सही नहीं थी।
बिल्कुल नहीं थी।
जून तो इसे अपने बचाव में एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकती है,
और वो यही सोचती है। वो ये जानकारी लीक कर देती है। उसका तर्क होता है, देखिए हर कलाकार चोरी करता है, मैंने जो किया वो एथीना भी करती थी, फिर सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है?
लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दांव उल्टा पड़ने वाला है।
बुरी तरह उल्टा पड़ जाता है।
कैसे? उसे सहानुभूति मिलने के बजाय कुछ और होता है।
लोग उसे और भी ज्यादा घृणित और बदलाखोर मानने लगते हैं। अब वो सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक ऐसी इंसान है जो अपनी मरी हुई दोस्त की इज्जत उछाल रही है।
ओह,
और फिर ताबूत में आखिरी कील ठोंकी जाती है। एथेना का पब्लिशर उसकी कुछ पुरानी अनछपी कहानियों का एक कलेक्शन निकालता है। उसमें एक कहानी होती है जिसमें जून जैसा ही एक किरदार है, एक प्रतिभाहीन, ईर्ष्यालु और दयनीय दोस्त। ये सार्वजनिक अपमान की पराकाष्ठा थी, जून का करियर, उसकी इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाता है।
इस पूरी तबाही के बाद जब इंसान सब कुछ खो देता है तो अक्सर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। क्या जून के साथ ऐसा होता है? क्या उसमें कोई पश्चाताप है?
यही पर यह उपन्यास सबसे ज्यादा डरावना और आज के दौर के हिसाब से सच्चा लगता है। कोई पश्चाताप नहीं, कोई आत्मज्ञान नहीं,
कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं। अपमानित और बहिष्कृत होने के बाद जून कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का एक आखिरी बेशर्म फैसला करती है।
वो एक संस्मरण लिखती है।
एक संस्मरण अपनी कहानी बताने के लिए? एक मिनट, अगर वो इस सब के बारे में एक संस्मरण लिख रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जो ये पूरी कहानी पढ़ रहे हैं वही उसका संस्मरण है? ठीक पकड़ा आपने।
अरे वाह, ये तो पूरा नैरेटिव ही बदल देता है।
बिल्कुल, उपन्यास की सबसे बड़ी साहित्यिक चाल यही है। हम पूरी कहानी जून की आवाज में उसके नजरिए से सुन रहे हैं। वो एक अनरिलायबल नरेटर है।
तो वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही है।
हाँ, वो खुद को एक पीड़ित की तरह पेश करती है, एक ऐसी महिला जिसे कैंसिल कल्चर की ऑनलाइन भीड़ ने गलत समझा और बर्बाद कर दिया। और उपन्यास का अंत क्या है?
क्या है?
वो बेशर्मी से अपने इसी नए संस्मरण, जिसका शीर्षक येलो फेस है, को प्रकाशकों को बेचने की कोशिश कर रही है। वो अपनी बदनामी को भी एक बिकाऊ माल बनाने के लिए तैयार है।
ये तो वाकई बहुत परेशान करने वाला अंत है। वो हारी नहीं, बल्कि उसने अपनी बदनामी को ही अपना नया हथियार बना लिया। ये आज के दौर पर एक बहुत कड़वी टिप्पणी है, जहां किसी भी तरह की अटेंशन, अच्छी या बुरी, एक करेंसी बन गई है।
बिल्कुल, और उपन्यास का शीर्षक येलो फेस भी बहुत प्रतीकात्मक है। ये शब्द उस पुरानी नस्लवादी थिएटर की प्रथा से आता है जहां गोरे एक्टर पीला मेकअप लगाकर एशियाई किरदार निभाते थे।
और जून भी तो साहित्यिक रूप से यही कर रही है।
हाँ, वो एक एशियाई पहचान का मुखौटा पहनकर एक ऐसी कहानी सुना रही हैं जो उसकी नहीं है, और उसे अपने फायदा के लिए बेच रही हैं।
तो ये उपन्यास किसी को भी बख्शता नहीं है, न जून को, न एथेना को, और ना ही उस पब्लिशिंग इंडस्ट्री को जो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे विविधता और प्रतिनिधित्व जैसे जरूरी शब्दों को भी बाजार में एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा सकता है।
और ये जून के किरदार के जरिए उस मानसिकता को भी उजागर करता है जिसे लगता है कि सफलता पर सिर्फ कुछ खास लोगों का ही हक है।
हाँ, कि जब कोई वंचित समुदाय का व्यक्ति सफल होता है तो उसे उसकी मेहनत का फल नहीं बल्कि सिस्टम का अनुचित फायदा माना जाता है। जून की पूरी कहानी इसी जहरीली सोच से चलती है।
अंत में ये कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि बहुत सारे असहज सवाल छोड़ जाती है। ये हमें मजबूर करती है सोचने पर कि हम जो कहानियां पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव्स देखते हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे प्रसिद्धि और सफलता की चाह नैतिक दिशा को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है।
और ये भी कि आज के डिजिटल युग में सच्चाई की लड़ाई अक्सर इस बात की लड़ाई बन गई है कि कथा यानी नैरेटिव पर किसका नियंत्रण है। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।